बाद आगे देखिए, अब आयत नंबर 21 से आयतों का जो हिस्सा शुरू हो रहा है 29 तक, इसमें तीन बड़े सवालों का जवाब मिलेगा आपको मुझे। अल्लाह कौन है, रसूल का क्या मुकाम है, और जन्नत और जहन्नम। आप कह लीजिए कि मक्की दौर के जो तीन बड़े काम थे ना, तौहीद, रिसालत और ईमान बिल आखिरा, इसका मजमुआ इस एक रुकू में है। आइए इसको इकट्ठा पढ़ के फिर बात करेंगे। या अय्युहन्नासु उबुदु रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। अब जरा सी इस आवाज को दिल पे लीजिएगा, बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स करें, और ऊपर से आवाज आती है, या अय्युहन्नास, ए लोगो। किसने किसको पुकारा? खालिक ने मखलूक को पुकारा, अरहमुर्राहिमीन ने एक हकीर जर्रे जितने इंसान को पुकारा। कहां से लाइन जुड़ रही है? डायरेक्ट कॉल है आपकी। तो ये है इस कुरान का पैगाम। ये कुरान इंसानियत के नाम रब का पैगाम है। अभी हम पढ़ के आए हुदल लिल मुत्तकीन, आगे पढ़ेंगे हुदल लिन नास सूरह आले इमरान में। फर्क क्या है? ये सब लोगों के लिए, फायदा इससे तकवा वाले उठाते हैं। ये है वो आयत और इस तरह की और आयतें जो कई गैर मुस्लिमों के दिल को हिदायत पे ले आई कि या अय्युहन्नास, ओ मैनकाइंड, अरे मैं तो सोचता था ये मुसलमानों की किताब है। आपने नाम सुना का कैट स्टीवन का, यूसुफ इस्लाम के नाम पे। आप उनके जाके इंटरव्यूज पढ़े, किसी मौके पे इस आयत ने उनके दिल में हिदायत की तलब पैदा की थी। ओ मैनकाइंड, ओ ह्यूमन, ओ इंसानों। अब सवाल पैदा होता है कि हमारे तो हाथों में पकड़ा दी गई शुरू में, हमारे तो एक कान में अशहदु अल्ला इलाहा और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्ला दूसरे में कह दिया, ये बाहर वाली इंसानियत को कौन देगा? ये यहां पर मैं देंगे। ये आयत मेरे आपके ऊपर हुज्जत है इस बात की कि अपने साथ इर्द गिर्द रहने वाले गैर मुस्लिमों को रब से जोड़ो। रब से जोड़ना कोई बुरी बात थोड़ी है। क्या करो? बंदगी इख्तियार करो अपने उस रब की जो तुम्हारा और तुमसे पहले जो लोग हो गुजरे इन सब का खालिक है। देखिए, अल्लाह का बनने के रास्ते में एक सबसे बड़ी रुकावट आबा परस्ती। खानदान क्या कहेगा, बिरादरी क्या कहेगी, अल्लाह ने उसकी जड़ खत्म कर दी। 13 साल तक मक्का में नबी सल्लम की जो मुखालफत की गई उसकी वजह कुरान नहीं था। कुरान तो उनको बड़ा प्यारा लगता, और अगर अल्लाह के नबी कहते इस आयत को पढ़ लो तो तुम्हारे रिश्ते हो जाएंगे, इस आयत को पढ़ो तो रिस्क में बरकत, इसको पढ़ लो तो तुम्हारी बेटियां ब्याही जाएंगी, तो किसको बुरा लगता कुरान? लिखिए ये बात, मक्का के 13 साल में मक्का वालों का नबी सल्लम से सिर्फ इस बात पे झगड़ा था कि जो तौर तरीके हमारे बाप दादा के वक्त से चलते आ रहे हैं तुम उस पर तनकीद क्यों करते हो? क्या वो जाहिल थे? क्या वो गाफिल थे? अल्लाह ने यहां कह दिया, देखो तुम्हारा जो रब है वो तुम्हारे बाप दादा का भी रब है, इसलिए तुम आबा को ना पूजो, आबा के रब को पूजो। तुम्हारे बचने की तवक्को सिर्फ इसी सूरत में हो सकती है, वही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन का फर्श बिछाया। कभी सब्ज घास को देखे और कहें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं कभी घास पे गौर करूं तो मुझे बंदा मोमिन लगता है। कैसे? जरा आज मेरी इन बातों को याद रखिएगा, और मैं आपको दावत दूंगी, अगर आप यहां बैठे बैठे थक जाएंगे ना तो बल्कि मुझे भी साथ ले जाइएगा। ये रोड के बिल्कुल दूसरी तरफ देखें ना आप, ये डबल रोड क्रॉस करें तो इसके ऑपोजिट रोड पे एक्टिविटी ग्राउंड है, उसमें बहुत सारी मशीन्स भी लगी हुई हैं और खूबसूरत सब्ज रंग का घास है। घास पे पांव रखें आप, हमारा कितना वजन होता है? मैं आपका नहीं पूछ रही, लेकिन एक औसत दर्जे में वजन कितना होता है? चलिए माशाल्लाह, आपने तो बोल ही दिया बोल पाने में। आप देखिए कि 60 किलो ये कह रहे हैं, कम से कम इतना ही होगा, इससे ऊपर ही होंगे ज्यादा। 60 किलो का वजन किसके ऊपर आता है? प्यारा नरम घास, और आप उस पर रख के ऊपर आगे जाएं वो फिर सीधा खड़ा हो जाता है। वजह, मैंने इस पर बहुत गौर किया, हमारे घर के बाहर भी बड़ा खूबसूरत गार्डन है, तो मैं सोचती हूँ कि क्या चीज इस घास को इतने वजन के बावजूद बचाती है? उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, नरमी, मुलायमियत, उसके अंदर हम्बलनेस है। अगर अकड़ होती ना पहले तो वह यूं कांटों की तरह खड़ा होता, और हम पांव रखते तो चीख मार के हटा देते हैं। खुरदरा बंदा किसी के साथ नहीं जी सकता, याद रखिए वो खुद से भी बेजार होता है। तो घास पे गौर कीजिए। फिर फरमाया आसमान की छत बनाई। आसमान को देखते हैं जो खूबसूरत छत है, और आप देखते हैं कि वेस्ट में जब हम आते हैं तो हमें आसमान एक दफा ब्लू क्यों लगता है, पाकिस्तान में जाए ना तो व्हाइटिश ब्लू है, बहुत दूधिया सा लगता है, शायद दूर है या क्या वजह है या गुब्बार है बीच में। लेकिन जो चीज़ मुझे वेस्ट में आते ही फील होती है बहुत ज़्यादा, मे भी ये ज़मीन का इस तरह का कोर है। खासतौर पे आपको था कि नॉर्वे तो ऊंचे है ना, पोल्स के करीब है, तो वहाँ से आसमान बहुत करीब दिखता है, और बिलीव मी 14वीं का चांद इतना बड़ा थाल लगता है। किसने बनाया इस पे तो गौर करो। तुम जिंदगी के सारे दुखों को छोड़ दो, तुम अपने सारे तफक्कुरात को पीछे डालो, देखो मेरे मालिक ने तुम्हारे लिए कितना प्यारा आसमान बिछाया और ऊपर से पानी बरसाया। ये कैसे बरसता है? बचपन में हम सोचते थे छलनी लगी हुई है और उसमें से छन छन के कतरे आ रहे हैं, हम पानी फेंक के सीधी धार मारे किसी के ऊपर बाल्टी डेल दें, अल्लाह कैसे छान छान के पानी लाता है और इसके जरिए से हर तरह की पैदावार निकाल कर तुम्हारे लिए रिस्क वहां पहुंचाया। पानी फीका, मट्टी कड़वी, जमीन में जाता है तो क्या निकलता है? मीठे आम, खट्टे अनार, और एक तरफ से करेले, और भिंडी तोरी, और कद्दू, ये कौन करता है? और कभी अंगूर खाया? ये कौन करता है? वो करता है का पस जब ये तुम जानते हो तो दूसरों को अल्लाह का मद्दे मुकाबिल ना ठहराओ। कैसे हम दूसरों को अल्लाह का मद्दे मुकाबिल ठहराते हैं? डरते दूसरों से, उम्मीदें दूसरों से रखते हैं, खुश उनको करना चाहते हैं। याद रखिए हर शिर्क कब्र के आगे सजदे से नहीं होता, और बुत के आगे माथा टेकने से नहीं होता, ये जाहिरी मुजाहिर है। दिल में दूसरों की बड़ाई का आ जाना ये भी शिर्क का नुक्ता आगाज है। अल्लाह ताला हमें अपने से जोड़ दे। अब इसके बाद देखिएगा नबी सल्लम का मुकाम। वइन कुंतुम फी रैबे मिम्मा नज़लना अला अब्दिना फातु बिसूरतिम मिन मिस्लिही। फरमाया अगर तुम्हें इस बात में शक है कि ये किताब जो हमने अपने बंदे पर उतारी है ये हमारी है या नहीं, तो इसके मानी दे की सूरत बना लाओ। यहां बंदे से कौन मुराद है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला को जब प्यार आता है ना अपने नबी पे तो उसको बंदा कहते हैं। ये उसकी पहली अलामत आपके सामने आ गई, और ये कुरान अल्लाह के नबी के दिल पर अल्लाह ने नाजिल किया। मक्का वाले इस किताब के बारे में शक करते थे, कहते थे इस बंदे ने आज तक किसी स्कूल का रुख नहीं किया, कोई इसका उस्ताद नहीं है, तो ये कैसे इतनी खूबसूरत बातें करता है? चलो इसको कोई बताता होगा, पढ़ाता होगा। कहा नहीं, इसको हमने पढ़ाया है, और अगर शक है तो जाओ इसके मानी दे की सूरत बना लाओ, अपने सारे हम नवाओं को बुला लो, एक अल्लाह को छोड़कर बाकी जिस जिस की चाहो मदद ले लो, अगर तुम सच्चे हो तो ये काम करके तो दिखाओ, लेकिन अगर तुमने ऐसा ना किया, और यकीनन तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। सोचिए, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। कल, आज और आने वाला कल, ये चैलेंज है। इतना खूबसूरत कलाम कोई बना नहीं सका, इतना मुकम्मल ज़ाब्ता हयात इंसानियत कोई दे नहीं सका, इतना खूबसूरत लाइफस्टाइल कोई इस दुनिया को दे नहीं सका। तो मान लीजिए कुरान इज द बेस्ट गाइड। अल्लाह ताला फरमाते हैं अकेले नहीं कर सकते तो दूसरों को साथ ले आओ, सेमिनार बुला लो, कॉन्फ्रेंसिस कर लो, सारी दुनिया के प्लेटफॉर्म्स को जमा कर लो। फइन लम तफअलू वलन तफअलू यू विल नेवर डू दिस। नोनी का नेवर शिद्दत है, कर ही नहीं सकते, कर भी नहीं सकोगे तो फिर एक ही काम कर लो, फत्तकुन्नार, उस आग से डर जाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर बनेंगे। दुआ कीजिए कि अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, ए अल्लाह हमें आग से बचा, और ए अल्लाह सारों को आग से बचा जो तैयार की गई मुनकरीन हक के लिए। यहां नोट कीजिएगा, आग काफिर के लिए बनी थी, कुछ मुसलमानों ने शौकिया उसमें कूदने की कोशिशें कर दी, और दूसरी बात है कि आग भी वो चीज मौजूद है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम उससे बचें। सुबह शाम 7 बार अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार कहा करें, शऊर के साथ कि अल्लाह मुझे आग से बचा। रिवायत में आता है कि फिर जहन्नुम भी उस शख्स से पनाह मांगती है कि अल्लाह ये सुबह शाम मेरे से पनाह मांगता है तो तू मुझे भी इससे बचा, और अल्लाह ताला में शऊर के साथ इसकी तौफीक अता फरमाए। अब यहां अकीदा बिल आखिरत जहन्नम की बात हुई तो साथ ही फरमा दिया, और ए पैगंबर जो लोग इस किताब पर ईमान ले आए और इसके मुताबिक अपने अमल दुरुस्त कर लें, दुआ कीजिए हम इनमें हो जाए। देखिए कुरान ऐसा नहीं है कि बस आप पूरा पढ़ते जाएं। बड़ी खूबसूरत एक किताब मेरे सामने आई, जो कुरान पढ़ जाता है ना उसका अखलाक कैसा हो जाता है। तो उसमें जो राइटर है उसने बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई थी, उन्होंने कहा कि कुरान का कारी या कुरान पढ़ने वाला वो नहीं है कि गिनता कितनी आयतें पढ़ ली, कितनी दफा पढ़ ली, हम तो गिनेंगे ना भी कुछ दिन के बाद। कहते हैं वो है जो तकवा की आयतें पढ़ता है तो कहता है मालिक मैं कब मुत्तकी बनूंगा। फिर वो सबर की आयतें पढ़ता है, कहता है मालिक मैं कब सबर वाली बनूंगी। फिर वो जन्नतियों की आयतें पढ़ता है तो दिल में कहता है मालिक मैं कब जन्नत में जाऊंगा। ये है कुरान का पढ़ना। तो मैं चाहती हूं कि इस दफा आप भी साथ साथ ये कहें, अल्लाह मुझे आग से बचा। दुआओं का सिलसिला साथ रखें, मुहासबा और दुआ, ये दो चीजें बंदे को इंशाल्लाह निजात देने के लिए काफी हो सकती है अगर शऊर के साथ हो। और जिन जन्नतों की खुशखबरियां दी गई वो कैसी है, फरमाए इनको खुशखबरी दे दो, इनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, इन बागों के फल सूरत में दुनिया के फलों से मिलते जुलते होंगे, जब कोई फल इन्हें खाने को दिया जाएगा तो वो कहेंगे ऐसे ही फल इससे पहले दुनिया में हमको दिए जाते थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दुनिया और जन्नत के फलों के बीच में नाम के सिवा कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ नाम का वो आम है, वहां पता नहीं कैसा होगा। आप देखिए यहां का फल खा के क्या लगता है। मैंने मुख्तलिफ फलों के नाम रखे हुए अपने सोच से, जैसे हम हर बच्चे का नाम रख लेते हैं ना, किसी को गुड्डू कहते हैं किसी को पप्पू कहते हैं, तो हर फल के साथ एक नाम आता है। जैसे तरबूज का नाम तरबूज सोचे तो मैं कहती हूँ ये अल्लाह का प्यार है। सच बताए जब सूखे गले पे तरबूज की फांक जाती है तो अल्लाह नहीं याद आता, और जब मीठा आम आप मुंह में रखते हैं तो उस वक्त ईमान की मिठास नहीं समझ आती। ये किसने किया? आप सूरत रात में पढ़ेंगे एक पानी, अब आप देखिए कि एक अनार का दाना, चले ऑरेंज के बीज को कभी मुंह में आ जाता है ना, आप जब जूस बनाते हैं और कभी ज्यादा ही नफासत से बनाएं तो कुछ बीज उसमें पिस जाए, कड़वा हो जाता है ना, छिलका थोड़ा सा पिस जाए, कड़वे छिलके के बीच में मीठा अनार किसने रखा? क्या फिर वो आपके मेरी तारीफों के लायक नहीं है? क्या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नहीं कहना? देखिए मेरी आपकी जिंदगी वो बनाता, हमें पैदा करता और उसके बाद कहता खाओ घास, खाओ भूसी, कड़वी कसैली चीजें रखता। जानवरों को देख लीजिए क्या खाते हैं, घास, और देते क्या है, दूध। और इंसान क्या पीता है, दूध, और काम कैसे करता है, क्या दे रहा है इंसानियत को, ये सोचने की बात है। और यहां देखिए बड़े मजे का मंजर है कि जैसे दुनिया में भी खाना खाने के दौरान अक्सर लोग खाने की बातें कर रहे होते हैं, तरकीबें पूछेंगे, ये अलग बात है बताने वाली को एक चीज छुपा ही लेती है कि तुम मेरे मुकाबले पे ना जाओ, वहां भी ऐसे लगता है कि जन्नत में भी बैठ के कह रहे अरे भाई ये तुम दुनिया में भी खाते थे। आप देखिए कभी आप शादी हालों में या दावतों में जाए ना, पूरा होकर गुनगा रहे होते हैं, मैंने इसमें लहसुन पीस के डाला, मैं इसमें ये करती हूं, मैं तो ऐसे पकाती हूं, है ना। तो जन्नत में वो सारे शुगल हो रहे हैं जो इंसान की तबीयत में, और सबसे बढ़ के ये कि उनके लिए वहां पाकीजा बीवियां होंगी और वो वहां हमेशा रहेंगे। पाकीजा बीवियां कौन? हर गंदगी से पाक। अब देखिए इंसानों की दुनिया में हर एक के साथ कुछ अलाइशें लगी हुई हैं जो इंसान ना चाहने के बावजूद खुद से दूर नहीं कर सकता। जन्नती औरत और जन्नती मर्द कोई गंदगी नहीं है, हैस निफास कोई सेक्रीशन नहीं है। फिर आप देखिए कि अखलाक की गंदगी नहीं है, वो लड़ेंगी नहीं अपने शोहरों से, और वो मर्द भी धमकियां नहीं देंगे आराम से बैठो छोड़ाऊंगा वापस, और नजरें भी पाक होंगी। जन्नत के मर्द को सबसे खूबसूरत अपनी बीवी लगेगी, और जन्नत की औरत भी अपने मर्द को गुलफाम शहजादा ही कहेगी। आप जैसा कौन? आप जरा से इमेजिनेशन में लाएं, हमारा दीन क्या छुड़वाता है? कुछ भी नहीं छुड़वाता, सिर्फ दुनिया में अल्लाह की मर्जी के बन के जियो, ये सब तुम्हें दूंगा। ये जो दुनिया की दौलत है ना, ये हमें एक ट्रायल के तौर पे दी गई है, असल बात ये कि इसके बाद हमने आखिरत में लेनी है अल्लाह ताला से। अब यहां पे ये बात पूरी कर दी अल्लाह ताला ने, अब इसके बाद थोड़ा सा अगर आप समझना चाहें, अभी तक हमने पढ़ा मुत्तकियों के बारे में, काफिरों के बारे में, منافقوں کے بارے میں. اب یہاں چوتھا گروہ ہے فاسق. پڑھ کے پھر بتاتی ہوں کہ اس کے اندر میرے آپ کے لیے کیا چھپا ہوا ہے, کیونکہ یہ چار ہی گروہ آپ کو مجھے دنیا میں نظر آئیں گے. اور وہ کون سے ہیں ادھر؟ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا یضل به کثیرا ویهدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین. فاسقوں کے گروہ کی بات ہے. ہاں اللہ اسے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی مثالیں دے. جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے, اور جو ماننے والے نہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار. اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہت ساروں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہت ساروں کو راہ راست دکھا دیتا ہے, اور اس سے گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں. پیچھے منافقوں کی علامتیں تھیں, یہاں فاسقوں کی دیکھیے. الذین ینقضون عهد الله من بعد ميثاقه, جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں, اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا اس کو کاٹتے ہیں, اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. فاسق کون ہوتا ہے؟ بڑا باریک سا فرق ہے. متقی جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے, کافر وہ جس کو خدا کی پرواہ نہیں ہے, منافق وہ دل میں کچھ اوپر کچھ. یہ فاسق کون ہے؟ بلکہ اگر آسانی کر دوں, منافق اور فاسق میں فرق ہے, بڑا باریک سا فرق ہے, ذرا سا توجہ دیجئے گا. منافق کو تھوڑی شرم ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. کام کرتا ہے گناہ کے چھپ کے کرتا ہے, اور ہو جائے تو اس کو چھپاتا ہے. اوپر اوپر سے بڑا دیندار بنتا ہے, اندر نفاق بھرا ہوتا ہے. بٹ فاسق, ایک لفظ بولنے کی اجازت دیجئے, بے شرم. فاسق کیا؟ جس کی حیائی اٹھ گئی, جس کی آنکھوں کا پانی ختم ہو گیا, جس کو کپڑے کی بھی ہوش نہیں ہے, جس کو نازیبا حرکتیں کرتے وقت بھی احساس نہیں ہوتا کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں. فاسق خود اپنی برائیوں کا اشتہار بن کے دنیا میں پھرتا ہے. یاد رکھیں یہ بدترین گروہ ہے. یہ پوری دنیا میں تھوڑے سے لوگ ہیں فاسق, جنہوں نے آج ساری دنیا کو بے حیا بنانے کی ٹھان لی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بچا کر رکھے. یہاں مچھر کی بات کی گئی. مچھر اور فاسق کے بیچ میں کیا مماثلت ہے؟ دیکھیے مچھر کیا کرتے ہیں, ڈنک مارتے ہیں. کسی سوسائٹی میں بیماریاں پھیلتی ہیں نا مچھروں سے, ملیریا پھیلتا ہے. کسی سوسائٹی میں فاسق لوگ وہی کردار ادا کرتے ہیں جو مچھر کرتا ہے, گندگی پھیلاتے ہیں. آج جتنی نیوڈیٹی, گندگی اور بےہودگی ہے یہ کن کی وجہ سے ہے؟ کیا آپ محسوس نہیں کر رہے سسٹرز کہ دن بدن کپڑے مختصر ہوتے جا رہے ہیں, دن بدن نظریں کھلتی ہی جا رہی ہیں. وہ ایشوز جو کبھی ڈسکشن میں نہیں آتے تھے, اب وہ بڑے بڑے پلیٹ فارمز پہ جاتے ہیں. کبھی آپ نے ہوموسیکشلٹی کا لفظ سنا تھا؟ کبھی گیئزم سنا تھا؟ کبھی لڑکا لڑکی کا تعلق تو کبھی سنا ہی ہوگا, کبھی لڑکی لڑکی کا تعلق سنا تھا؟ یہ سب فاسقوں کے تحفے ہیں. اور آج ہم سب کو جس کی فکر کرنی ہے, ہماری نسلیں, ہمارے پیارے بچے, آنے والے 5 سال, پھر 10 سال, پھر اگلے 20 سال میں سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت انسانیت کو درپیش ہے وہ ہمارے بچوں کو فاسق بنانے کا نظریہ. جنس کی تمیز ختم کر دو, لڑکی لڑکے کا کانسیپٹ ختم, اب سب ایک ہے. ان کی مت مار دو, یہ بلو پنک اب ختم کر دو, سب کو ایک ہی پہناؤ. پہلے لڑکی لڑکے کو ساتھ بٹھاتے تھے ڈے کیئرز میں, بچپن سے سکھاتے تھے تم کپل بنو. آپ کہتے ہیں نہیں, کپل کچھ نہیں ہوتا, یہ تو پرانا فیشن ہے. اب 2 لڑکیاں بیٹھو اور جو چاہے کرو, اور 2 لڑکے بیٹھو اور جو چاہے کرو. اگر ہم نے اس سچے دین کی دعوت دینی نہ شروع کی, یاد رکھیے ہماری نسلوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا, اور وہ پھر آ کے آپ سے سوال کریں گے, ممی واٹس رانگ اف آئی ایم گوئنگ ٹو بی میری ود مائی فرینڈ. کیا ہوا اگر میں اپنے دوست سے شادی کر رہا ہوں, آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اور ماما کیا فرق پڑتا ہے اگر میں اپنی سہیلی سے شادی کر رہا ہوں, آپ کو کیا لگے؟ دیکھیں نا ہماری کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے, ہم کتنے خوش رہیں گے, وی آر لائک مائنڈیڈ. یہ وقت آ رہا ہے, ڈرانا نہیں چاہتی, آج پہلا ہی دن ہے. حالات اس سے بہت زیادہ سخت ہو گئے جو آپ نے میں نے سنا ہوا ہے. تو دعا کیجئے اللہ فسق کو توڑ دے, وہ گناہ کرتے ہوئے نہ شرمائیں, آپ کو مجھے نیکی کرتے ہوئے شرمائیں, وہ خراب کام کرتے ہوئے نہ ڈریں, ہم اچھا کام کرتے ہوئے ڈریں. میں سوچتی ہوں کہ یہ امر بالمعروف اور نیکی کا حکم, تبلیغ کرنا, قرآن کی تعلیم کو عام کرنا, اس پہ تو گورنمنٹ گولڈ میڈل دے گی. دیکھیے گا ایک وقت آئے گا دین داروں کو بلا کر گولڈ میڈل دے گی کہ تم ہی لوگ ہو جن کی تعلیمات کے بعد لوگوں کے کچھ دل بدلتے ہیں اور وہ گندگی چھوڑ دیتے ہیں, ہم تو ساری پابندیاں لگا کے پیچھے ہٹ گئے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ گناہ کی شدت دل سے نہ کم ہو. اور اگلی آیت جو ہمارے اس حصے کی آیت تدبر ہے میں پڑھتی ہوں پھر انشاءاللہ, یعنی ہر حصے میں سے ہم ہر دن ایک آیت پہ جو غور کریں گے, اور آپ اس آیت کو سنتے وقت بالکل وہی بات پھر کہوں گی کہ اپنے تھیم پہ آ جائیے, اور وہ کیا ہے, ٹائم مینجمنٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو زندگی کی دولت دی اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ دیکھو تمہیں میں نے جو کچھ دیا کبھی تم نے اس پہ غور و فکر کیا؟ کیا ہے آیت میں, نظریں جمائیے گا, کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. پھر تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا اور تم مرتا تھے, پھر اس نے تم کو زندہ کیا, پھر وہ تم کو مارے گا, پھر تم کو زندہ کرے گا, اور پھر تم اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے. قرآن پاک میں موجود ہے آیت, اگر آپ دیکھیں کیا مرحلے ہیں اس وقت. نمبر ایک, کنتم امواتن. ہماری زندگی کے چار مراحل گزرے ہیں, ہم سب مردہ تھے, کچھ بھی نہیں تھے. کون سی روحیں تھیں صرف, یہ وجود نہیں تھا جو آج دکھ رہا ہے. آج کیا ہے, فاحیاکم, یہ ہماری فیس چل رہی ہے. پھر ثم یمیتکم, پھر تم کو مارے گا, یہ کون سا, جو موت آنی ہے. ثم یحییکم, کون سی زندگی ہے, آخرت کی نہیں ہے, قبر میں جانے کے بعد جو مردے کو زندہ کیا جاتا ہے. ثم الیہ ترجعون, پھر وہ اگلا مرحلہ ہے کہ پھر دوبارہ سلایا جائے گا اور پھر قیامت کے دن آگے جاؤ گے. یہ ہے چند لفظوں کی کہانی میری اور آپ کی. کیا میں اور آپ اپنی زندگی کے اس دور کو جس سے آج ہم گزر رہے ہیں, جس کو اس آیت میں ہائی لائٹ کر لیجئے, فاحیاکم, کیا ہم اس کو عقل مندی کے ساتھ گزار رہے ہیں؟ اس آیت پہ آپ جا کے غور کیجئے گا. انشاءاللہ جو لوگ رجسٹریشن کرا رہے ہیں تو ای میل میں ایک چیک لسٹ ملا کرے گی ڈیلی, یہ اسکرین پہ بھی اس کے کچھ ہنٹس ہیں, تو اس میں آپ جا کے خود اپنے ہاتھوں سے اس آیت کو لکھیں, ترجمہ بھی لکھیں گے اور عربی بھی, اور پھر غور کریں. سارا کھیل اس چھوٹے سے فاحیاکم کا ہے جو ہم سے نبٹ نہیں رہا. یاد رکھیے یہ زندگی بہت مختصر ہے, آج ہیں کل نہیں ہوں گے, اس وقت کا بہترین استعمال کریں. یہ دیکھیے ہماری آج کی جو شیٹ آپ کے سامنے ہے, آیت تدبر, آپ نے یہاں یہ لکھنی ہے. جو ہماری آج کے سبق کی حدیث تھی وہ کیا تھی, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تندرستی اور فارغ البالی. فارغ البالی کیا ہوتی ہے, وقت کا ہونا, یعنی آج کل ہم فری ہیں, اگر دو ایسی نعمتیں ہیں جن کی لوگ قدر نہیں کرتے بلکہ اکثر نقصان اٹھاتے ہیں. بات سچ ہے کہ نہیں؟ تو انشاءاللہ آپ نے اس حدیث پہ غور کر کے صحت اور زندگی کی قدر کرنی ہے. پھر آپ دیکھیں تیسری چیز آپ کو نظر آئے گی, آج کی دعا. دعا کون سی تھی آج کی, اہدنا الصراط المستقیم. کل یہاں آنے تک آپ نے تڑپ کے, دل کے سوز اور گداز کے ساتھ ہدایت کی دعا کرنی ہے, اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہدایت پہ جمع دے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس میں آپ کو آگے ایک چیز دکھ رہی ہے کہ وقت کا بہترین استعمال کیسے کریں. اب یہ فاحیاکم زندگی ہے نا آج کی, ہے تو وہی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے بیچ میں ہیں. کیا کریں, کاموں کی فہرست بنائیں. جب تک میں اور آپ اپنے سامنے کوئی گول نہیں رکھیں کہ کب کیا کرنا ہے, کیا امپورٹنٹ ہے, کیا ارجنٹ ہے, کیا غیر امپورٹنٹ ہے, کیا نہیں ہے, تب تک بات نہیں سمجھ آتی. کل ہم نے ایک پریزنٹیشن ادھر دکھایا تھا, خلاصہ اس کا یہی ہے کہ زندگی میں اگر بیکار چیزوں کے پتھر اپنی زندگی میں بھر لیں گے نا تو کارآمد چیزوں کا وقت نہیں ہوگا. امیجن کیجئے ایک جار ہے, اس میں آپ ریت بھر لیتے ہیں, اوپر کچھ کنکر ڈال دیتے ہیں, آپ کے پاس کچھ بال ہے, ہر بال آپ کی زندگی کا ایک رول ہے. آپ ماں ہیں, بیوی ہیں, بیٹی ہیں, کہیں آپ ورک کر رہی ہیں, कुछ रिश्ते हैं जिनको आपने टाइम देना है। अब आप उसी जार के अंदर वो बॉल्स डालेंगे तो कितनी को डालेंगी? तीन चार डालेंगी, बाकी बाहर रह जाएंगी। क्या करें? उस जार को खाली करें। सबसे पहले अपनी जिंदगी के जार में बॉल्स डालें, अपना हर रोल पहचाने। माँ होने के नाते मेरी क्या जिम्मेदारी है, बेटी होने के, बहू होने के, और इसी तरह हर चीज को उसका हक दें। जाहिर वो भर जाएगा, लेकिन आप कुछ कंकर लें, वो डाल दें, वो खाली जगहों में कंकर आ जाएंगे। कंकर क्या है? जो आपको बराह रास्त तो चीजें नहीं नजर आ रही होती, लेकिन कुछ साइड के काम हमारे दूसरों की वजह से निकल आते हैं। आप उसमें फिर भी कहते हैं जगह भर गई नहीं, आप फिर रेत का एक ग्लास डालेंगे वो भी डल जाएगा। आप कहते अब भी भर गए, नहीं, आप उसमें जूस का एक ग्लास लेकर डालें, वो रेत में जाके वो भी जज्ब होगा। बिल्कुल इसी तरह याद रखिए, मैं और आप अपनी जिंदगी के इस जार को बड़ा नहीं कर सकते। किसी का तो अल्लाह ने पता नहीं एक 20 साल के लिखा हुआ है, किसी का 25 साल, 26, 50, 60। आपने मैंने इसको मैनेज अच्छा करना है। देखिए एक छोटा सा हैंड कैरी होता है ना, सफर में साथ जाता है। कभी आप देखें तो कुछ लोग उस थोड़े से में बहुत कुछ रख लेते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, कोई खाली जगह नहीं छोड़ते, और कुछ उसमें गुच्छे मुच्छे करके दो चार चीजें रख के ले जाते हैं। फर्क है ना? तो अपनी जिंदगी की बेतरतीबियों को हमने इंशाल्लाह खत्म करना है। फिर इसी तरह आप देखिए दूसरी तरफ आपको दिख रहा है वक्त जाया करने वाले काम। हमारी जिंदगी में टाइम वेस्टर्स कहाँ है? उसमें जो चीज आज की आपकी चीज में एक हल्का सा हिंट है, आगे जाके इस पर हम बात करेंगे, वो क्या है? कम अज कम आज से आप इस पर कानों को टकराने दें कि अपने सेल फोन के इस्तेमाल को कम से कम कर दें। मुझे ऐसे लगता है कुछ लोगों को सेल फोन जो है ना वो ऑक्सीजन मास्क लगता है। इस वक्त भी कुछ लोगों के हाथ में होगा, नोट करें, अपने सोते में भी हाथ में होता है, तकिए के नीचे से रात को निकलता है, सुबह ना मिले आधे लोगों के सेलफोन वो क्विल्ट के अंदर छुपे होते हैं, बाथरूम में सेलफोन है कि नहीं, ऐसी चीजें। हालांकि इसका सही इस्तेमाल बहुत अच्छा है। आप देखिए कि अच्छा इस्तेमाल होगा। इसी शीट में आगे आपको कुछ इसमें दिए भी गए अल्हम्दुलिल्लाह। इसको नेमत समझिए, आप सेलफोन अपने या अपने बच्चों का फेंक नहीं सकते, ये वक्त की जरूरत है। अल्लाह ने सिला रहमी को इससे मौका दिया, बीमारों का हाल पूछिए, एक दूसरे की खैर खबर हो। लेकिन अब इसका ये तो मतलब नहीं हो गया ना कि हर वक्त आप अपने आप को इसी के साथ रखें। तो ये टाइम वेस्टर्स में आज बहुत कुछ है। करें क्या? सेल फोन का इस्तेमाल महदूद कर दें, शुक्र करें कि अल्लाह ने दिया है, और इसके बेजा इस्तेमाल से रुकिए। लंबी कॉल्स ना करें, गलत वक्तों पर ना करें। इस पर एक लेक्चर मैं रिकमेंड करूंगी। हमारा पाकिस्तान का जो ट्रिप था अभी लास्ट, उसके अंदर कराची लेक्चर्स में ये लेक्चर हुआ था, सेल फोन का इस्तेमाल, आदाब, शरायत और नुकसानात। बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिव किस्म का था, पॉइंट्स की सूरत में बात की थी। अल्लाह करे कि हम इन नेमतों को सही तरह इस्तेमाल कर सकें। इंशाल्लाह ये बात आगे भी आएगी।